ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतर्पङ्गर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदां भोज राधामदनमोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मा मनभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद्भागवतम के सप्तम स्कंध के सातवें अध्याय का 22 नंबर का श्लोक 7-7-22। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तः त्रयः एव हि तद्गुणः विकारः षोडश आचार्यैः पुमान् एकः समन्वयात्। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता त्रय एव हि तद्गुणः विकारः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात् अष्टौ आठ प्रकृतयः भौतिक शक्तियां प्रोक्तः कही गई हैं। त्रयः तीन एव निश्चय ही निश्चित तद्गुणः भौतिक गुण भौतिक शक्ति के गुण विकारः रूपांतर दोष षोडश सोलह आचार्य ही अधिकारियों द्वारा पुमान जीव एक एक समन्वयात समन्वय से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, भगवान के आठ भिन्न भौतिक शक्तियों प्रकृति के तीन गुणों तथा सोलह विकारों ग्यारह इंद्रियों तथा पांच स्थूल तत्व यथा पृथ्वी तथा जल के अंतर्गत एक ही आत्मा साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। अतएव सारे महान आचार्यों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, क्षेत्रेषु देहेषु तथात्म योगै अध्यात्मविद् ब्रह्म गतिम लभेत। आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं, और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर के भीतर आत्मा का अनुसंधान करने में पटु हैं, उसे उन आठ बहिरंगा शक्तियों को समझना चाहिए जो भगवद्गीता 7:4 में सूचीबद्ध हैं। भूमिरापन लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतिजम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार ये आठों मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। भूमि में इंद्रिय बोध के सारे विषय सम्मिलित हैं, रूप रस गंध तथा स्पर्श, गुलाब की सुगंध, मीठे फल का स्वाद तथा अन्य जो कुछ हम चाहते हैं वह सब भूमि के ही अंतर्गत आता है। जैसा कि श्रीमद्भागवत 1:10:4 में कहा गया है, सर्व काम दुघा मही, पृथ्वी मही में हमारी सारी आवश्यक वस्तुएं हैं। इस प्रकार भूमि या पृथ्वी में सारे इंद्रिय बोध के विषय हैं। स्थूल भौतिक तत्व तथा सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि तथा अहंकार मिलकर संपूर्ण भौतिक शक्ति बनाते हैं। इसी सकल भौतिक शक्ति में तीन गुण हैं, ये हैं सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण। ये आत्मा से नहीं अपितु प्रकृति शक्ति से संबंध है। इन्हीं तीन तत्वों को अन्योन्य क्रिया से पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय तथा इनका नियंत्रक मन प्रकट होते हैं। तब इन गुणों के अनुसार जीवात्मा विभिन्न प्रकार के कर्मों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान विचार अनुभूति तथा इच्छा से संपन्न करने का अवसर प्राप्त करता है। इस प्रकार शारीरिक यंत्र कार्य करना प्रारंभ करता है। इसका समुचित विश्लेषण बड़े बड़े आचार्यों द्वारा विशेष रूप से देवहूति पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार कपिल द्वारा सांख्य योग में हुआ है। यहाँ पर इसका संकेत आचार्य शब्द से हुआ है। हमें चाहिए कि जो वैध आचार्य न हो उनका अनुगमन न करें। आचार्यवान पुरुषो वेद, दक्ष आचार्य के शरण ग्रहण करने पर ही सत्य को पूरी तरह से समझा जा सकता है। जीवात्मा व्यष्टि है लेकिन शरीर कई भौतिक तत्वों का सम्मिश्रण है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि जैव ही जीव भौतिक तत्वों के इस संगठन को छोड़ देता है तेम ही पदार्थ मात्र ढेर बन जाता है। गुणात्मक रूप से पदार्थ एक है और आत्मा भी परमात्मा के साथ एक है। परमात्मा एक है तथा आत्मा भी एक है, किंतु आत्मा को व्यष्टि भौतिक शक्ति के संयोग का नियंता माना जाता है, जबकि परमेश्वर समग्र भौतिक शक्ति का नियंत्रक है। जीव अपने शरीर विशेष का स्वामी है और अपने कर्मों के अनुसार विविध सुख दुख भोगता है, किंतु परम पुरुष परमात्मा यद्यपि एक है किंतु वह विभिन्न शरीरों में व्यष्टि के रूप में उपस्थित है। भौतिक शक्ति वस्तुतः 24 तत्वों में विभाजित है। आत्मा अथवा शरीर का स्वामी 25वां तत्व है और इन सबों के ऊपर परमात्मा रूप में भगवान विष्णु है जो 26वें तत्व है। जब कोई इन 26ों तत्वों को जान लेता है तो वह अध्यात्मवीत बन जाता है, जैसा कि भगवत गीता 13:3 में कहा गया है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम। क्षेत्र शरीर तथा आत्मा और परमात्मा मिलकर असली ज्ञान की सृष्टि करते हैं। जब तक मनुष्य यह नहीं समझ लेता कि आत्मा से भगवान का नित्य संबंध है तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7:19 में हुई है, बहूनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वास्तव में ज्ञानी हैं अनेक जन्मों के बाद वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानते हुए मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। प्रत्येक वस्तु में चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक, उन वासुदेव के विभिन्न शक्तियाँ निहित रहती हैं जिनके अधीन आत्मा है जो परमेश्वर का ही अंश है। इस पूर्ण ज्ञान को समझ लेने पर मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रहलाद महाराज के वक्तव्य को सुन रहे हैं। आप कथा जानते हैं कि एक दिन प्रहलाद महाराज अवसर पा करके विद्यालय में अवकाश पा करके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने लगे और उनके जो साथी थे स्कूल के बच्चे थे वो प्रहलाद महाराज में उनकी बहुत गौरव बुद्धि थी, उनका बहुत महत्व देते थे। अब बच्चों को बुला करके जो बोलना प्रारंभ किए तो सब बच्चे उसको बहुत ध्यान से सुनने लगे, एकदम दृष्टि प्रहलाद महाराज के तरफ रह करके और मन को उनके प्रवचन पर केंद्रित करके सुन रहे थे। प्रहलाद महाराज भगवान की शरणागति की बात कही, भागवत धर्म के आचरण की बात कही, बहुत जोर दे करके सब तरह से स्थापित किए। लेकिन इस सब बात को सुन करके प्रहलाद महाराज के जो साथी हैं उनके मन में एक बहुत भारी कौतुक जग गया कि तो स्कूल में हम लोगों के साथ भर्ती हुआ है, अलग से कोई कोचिंग तो करता नहीं है, तो इसको ज्ञान कहाँ से आ गया? ऐसा ज्ञान तो हम लोगों के क्लास में कभी प्रदान नहीं किया गया। तो स्कूल के जो बच्चे हैं प्रहलाद महाराज के जो साथी हैं असुर बालक हैं तो प्रहलाद महाराज से प्रश्न कर दिए कि आखिर यह ज्ञान आप कहां से प्राप्त किए। इन दो गुरु को छोड़ करके संड अमर को तो ना तो हम लोग दूसरे गुरु के पास जाते हैं ना आप जाते हैं, तो आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया। और प्रहलाद महाराज सब कथा को बतलाए कि हमारे पिताजी जब घोर तपस्या में लग गए और देवताओं को एक अवसर मिला, वे स्वर्ग को खाली कराना चाहते थे और उसी क्रम में हमारी माता को भी पकड़ करके ले जा रहे थे। बीच में नारद जी मिल गए, इंद्र को मना किए पर परिग्रहम, ये दूसरे की संपत्ति है, दूसरे की पत्नी है, इसको तुम कहाँ ले जा रहे हो। और इंद्र बतलाए कि हमको इस स्त्री से कोई मतलब नहीं है, यह गर्भवती है, यह हमारे शत्रु का पुत्र है, वीरज है, और मैं उसको नष्ट करना चाहता, तो मैं केवल उतना दिन तक इस स्त्री को अपने पास रखूंगा जब तक यह प्रसव नहीं करती। नारद जी की बात, नारद जी से जब इस प्रकार कहे तो नारद जी अस्पष्ट शब्दों में कहे कि इसके गर्भ में जो व्यक्ति है उसका वध तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अनंतानुचर महाबली, कयाधु के गर्भ में जो व्यक्ति है तो वह तो भगवान का भक्त है और बहुत बलवान है, और मुंचा मुंचा इसको छोड़ दो। स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे पर परिग्रह, दूसरे की स्त्री है, दूसरे की संपत्ति है, तुम्हारा पकड़ने का तुमको इसको पकड़ने का अधिकार नहीं है। तो इंद्र उस स्त्री को छोड़ दिए, लेकिन अब तो इस स्त्री के सामने समस्या क्यों अकेले जाए कहाँ, गर्भवती स्त्री, अब उसके असहाय स्थिति को देख करके नारद जी उसको निजाश्रम अपने आश्रम पर लाए। आश्रम का अर्थ है उनका आश्रम बद्रिकाश्रम है या किसी मित्र का घर होगा जिसको एकदम अपना जैसा ही मानते थे। कोई कोई संबंध होता है कि वहां जाने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि नारद जी का तो अपना कोई घर नहीं था, अपना आश्रम नहीं था। अब वह स्त्री बहुत सेवा करने लगी, परमया भक्त्या, बहुत श्रद्धा के साथ, लेकिन कह रहे हैं कि सती वह पातिव्रत धर्म का थोड़ा भी उल्लंघन नहीं की, अपने पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए नारद जी की खूब सेवा की, पर्यचरत, और उसके मन में कामना थी। दो कामना का उल्लेख किया गया है, गर्भस्य क्षेमाय और इच्छा प्रसुप्तये, वो अपने गर्भ को सुरक्षित रहना चाहती थी और उसके इच्छा थे कि हम अपने इच्छा के अनुसार प्रसव करें। यह थोड़ा कठिन कार्य है, कोई भी स्त्री है और गर्भ को अपने पेट में रखती है, बच्चे को गर्भ में धारण करती है, लेकिन शरीर का कुछ वायु है कि वह फोर्स करता है। अब वह वायु सक्रिय हो जाता है, प्रसूति वायु सक्रिय हो जाता है, तब स्त्री के इच्छा के ऊपर नहीं है कि गर्भ को अपने पेट में रखे, बाध्य है बाहर करने के लिए। लेकिन कयाधु के मन में इच्छा थी कि हमारे पति जब वापस आ जाए तो तो उनके समक्ष मैं प्रसव करूं। तो इसलिए वो नारद जी से चाह रही थी कि हमको यह क्षमता प्रदान कर दे। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वे तो योगेश्वर हैं, प्रादाद उभय मिश्वर, वे समर्थ हैं दोनों इच्छा को पूर्ण किए। उभयम दोनों को, दोनों का दो व्याख्या है। एक तो यह है कि गर्भ की रक्षा और अपने इच्छा के अनुसार प्रसव की क्षमता दोनों प्रदान किए। और उभयम का एक अर्थ है कि यह दोनों तो प्रदान किए ही, क्योंकि इसकी तो इच्छा कयाधु की तरफ से था, इसके साथ ही वे भक्ति का तत्व भी प्रदान किए। तो उभयम का अर्थ है कि उसके मन में जो इच्छा थी उसको, और प्रहलाद को ध्यान में रह करके भक्ति के तत्व को भी। वो प्रहलाद महाराज गर्भ में है, माम उद्दिश्य, वे कह रहे हैं कि हमको ध्यान में रह करके हमारी माँ को उपदेश दे रहे थे। तो कहिए के बात है, इन बातों की व्याख्या के लिए समय नहीं है, लेकिन संकेत समझ लेना चाहिए कि कोई गर्भवती स्त्री है और उसके व्यवहार का कितना भारी असर गर्भ पर पड़ता है। उपदेश दिया जा रहा है स्त्री को, वह सुन रही है और ज्ञान प्राप्त हो गया प्रहलाद महाराज को। स्त्री के विषय में, अपने माँ के विषय में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वह तो कुछ दिन के बाद भूल गई, स्त्रीत्वात् क्यों भूल गई, इसलिए कि स्त्री है। अरे भाई स्त्री है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि स्त्री होने से क्यों भूल जाएगी। तो कम से कम दो चीज ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों का काम करने में बहुत मन लगता है। कोई कोई स्त्री है कि उनको चुपचाप बैठने को कह दीजिए तो बहुत भारी दंड हो जाएगा। वो कुछ न कुछ घर के थोड़े दूर में ही, लेकिन बहुत चिंता में रहती है, इसको संजो करके रखना, इसको साफ करके रखना। तो उनका मन तो बर्तन कपड़ा इसमें लगा रहता है। तो एक तो कारण यह है, और दूसरी बात है कि बेटा बेटी में राग भी बहुत अधिक होता है। अब राग होने से तो बेटा बेटी चित्त में छाए रहते हैं, वो ज्ञान अब धीरे धीरे धूमिल हो जाता है। और एक कारण दे रहे हैं कि कालस्य दीर्घत्वात्, बहुत दिन हो गया, तो ऐसे ये काल का स्वभाव है कि हमारे स्मरण को बाधित करता रहता है। कोई चीज आज पढ़े हैं तो अब भुलाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, काल के प्रभाव से धीरे धीरे भूल जाता है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार सब घटना को बतलाए, और प्रहलाद महाराज को ऐसा लगा कि इन बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट है, उनके मनोभाव को समझ करके वे कहने लगे। कोई भी टीचर है तो अपने स्टूडेंट को समझता है। वास्तव में एक शिक्षाविद तो परिभाषा ही दे दिया है, टीचिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड द पीपुल, अपने छात्र को समझ जाना, यही शिक्षण है। तो प्रहलाद महाराज उनको आशीर्वाद दे रहे हैं या आश्वासन दे रहे हैं कि यदि तुम लोगों की श्रद्धा होगी तो तुम लोगों को भी यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वे कौन ज्ञान है, क्या है, वो कैसे प्राप्त होगा, तब अब प्रहलाद महाराज देह और आत्मा के अंतर को समझा रहे हैं। देखिए ये जो ब्रह्मांड है या उसी का छोटा रूप शरीर है, तो शरीर पर आप विचार करेंगे तो इसमें जड़ और चेतन का संघात है, कॉम्बिनेशन। कोई कोई चीज जड़ है, निष्क्रिय है, ज्ञानहीन है, और इसी में कोई कोई तत्व है जो चेतन है, सक्रिय है। और कोई भी मनुष्य है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो चैतन्य तत्व का अन्वेषण करे, भगवान का अन्वेषण करे। अरे कहाँ अन्वेषण करेगा, कि इसी शरीर में अन्वेषण कर सकता। अध्यात्म विद गतिम लभेत, जो इस शरीर के प्रकृति को जानता है, नेचर को जानता है, तो क्षेत्रेषु देहेषु अध्यात्म विद ब्रह्म गतिम लभेत। तो इसी शरीर में वह आत्मा का या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और ज्ञान क्या प्राप्त करता है, वो उसको अपने अधिकार में कर लेता है। ऐसा कहा गया है कि जो उपयुक्त साधन का अवलंबन करे, तो गुणेषु इसी शरीर में भगवान की प्राप्ति कर लेगा। गुणेषु इसी संसार में, घर गृहस्थी में भगवान को प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मा जी कई एक उदाहरण दे रहे हैं, यथाग्नि मेधस्य मृतम च गोसु। जैसे जो सही उपाय का अवलंबन करता है तो अरणि से ही आग प्राप्त कर लेता है। उपाय का कितना भारी महत्व है, इन उदाहरण से आप समझ सकते हैं। किसी को आग की जरूरत है और खूब परिश्रम करे, लेकिन अब दीवाल पर माथा पीटने से या एक्सरसाइज करने से या बहुत लोगों को जुटा करके उनसे प्रार्थना करने से तो आग की प्राप्ति होगी नहीं होगी, या कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो उपाय जनता है वो एक रुपया का दिया सलाई लाएगा, क्यों रगड़ दिया आग की प्राप्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि यथा कैसे मैं श्लोक बोला, यथाग्नि मेधस्य मृतम च गोसु। और किसी को घी की आवश्यकता है तो गाय का पालन करेगा और गाय से दूध प्राप्त करके, दही जमा करके घी प्राप्त कर लेगा। और भूवि अम्बु अन्नम, किसी को अन्न की आवश्यकता है या जल की आवश्यकता है तो उपाय करके भूमि से प्राप्त कर लेता है। जल की आवश्यकता है तो पाइप डाल करके, बोरिंग करके जल प्राप्त कर लेता है। खेती इत्यादि करके और अन्न को प्राप्त कर लेता है, जो उपाय की महिमा। देखिए जो बड़े बौद्धिक लोग हैं, बड़े बड़े पत्रकार, प्रोफेसर, वकील, अब वे लोग चाहें कि हम अपने ऑफिस में अपने बुद्धि के बल से अन्न उत्पन्न कर दूंगा, जो बहुत कठिन है, वे नहीं कर सकते। लेकिन अंगूठा छाप किसान है, अपना साइन भी नहीं कर सकता, वह भी ट्रक ट्रक अन्न दूसरे को दे देता है, क्योंकि वह सही उपाय का अवलंबन किया। किसी व्यक्ति को जीविका की आवश्यकता है तो कुछ हाल रोजगार चालू करता है, दुकान चालू कर दिया, कोई नौकरी कर लिया तो जीविका प्राप्त कर लेता है। तो जैसे इन सब वस्तु को सही उपाय से प्राप्त कर लेते हैं, ओके, जोगैर मनुष्य अध्ययंत ही त्वाम गुणेश बुद्ध्या कवयो बदंती। अरे कि जो विद्वान लोग हैं तो यही कहते हैं कि बुद्ध्या जोग, बुद्धि जोग से, भक्ति जोग से गुणेश इसी प्रकृति के अंदर इसी संसार के अंदर या इसी शरीर के अंदर अध्ययन्ति हित्वाम, सही उपाय का अवलंबन करने से व्यक्ति यही आपको प्राप्त कर लेता है। ये बड़े बड़े कवि कहते हैं, या एक अर्थ है कि प्राप्त भी कर लेता है, उसका वर्णन भी करता है। वो प्रहलाद महाराज सलाह दे रहे हैं कि व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, और इसी शरीर में कर सकता है। अध्यात्मविद उसको इस शरीर के प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे खनिज पदार्थ है, सोना है, हीरा है, यूरेनियम है, तो ऐसा नहीं होता है कि कहीं उसका स्टोर पड़ा हुआ है। वो तो एक तो भूमि के नीचे है और कोयला के भंडार में या दूसरे दूसरे चीज के भंडार में है, वो छिपा हुआ है। बड़ा बड़ा कोयला का भंडार है और उसमें कहीं कहीं यूरेनियम है या अबरक है या सोना है, हीरा है, लेकिन जो जानकार व्यक्ति है वहां से निकाल लेता है ना। वे उपाय का अवलंबन करके निकाल लेता है। तो उसी प्रकार जो अध्यात्मविद है, इससे शरीर के प्रकृति को समझने वाले हैं और ब्रह्म गतिम लभेत, वे इसको प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त कर लेना चाहिए। तो भाई शरीर का क्या स्वभाव है, तो कह रहे हैं कि अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता। अब इस शरीर की संरचना पर विचार करेंगे तो इसमें आठ प्रकृति है। प्रकृति और विकृति, ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ कह रहे हैं कि अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता, ये शरीर में जो जो तत्व हैं तो उसमें आठ को प्रकृति कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य ही, जो सांख्य योग के आचार्य विद्वान हैं, तो शरीर के तत्वों का विश्लेषण करते हुए बतलाए हैं कि आठ प्रकृति है और तीन उसके गुण हैं और षोडश सोलह विकार है और पुमान एक समन्वयात, और इसी में एक पुरुष बंधा हुआ है या इसमें प्रविष्ट है, इससे संबंधित है। तो ये प्रकृति इस शरीर के नेचर के विषय में कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि देहस्तु सर्वसंघातो जगतस्तस्तुरिति द्विधा अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेति इति अतत्यजन। आगे के श्लोक में उपाय बतलाए हैं कि यही पुरुष का अन्वेषण करना है। पुरुष आत्मा के लिए भी प्रयुक्त है और परमात्मा के लिए भी, दोनों के लिए। ऊपर भी जो लक्षण दिया गया है पहले आप पढ़ चुके हैं, तो आत्मा पर भी घटित होगा और परमात्मा पर भी घटित होगा। ये जो शरीर है जड़ चेतन का संघात है और इसी में भगवान का अन्वेषण करना है, लेकिन अन्वेषण करने में कुछ बाधा है। बाधा को भी श्रीमद् भागवतम में बतलाया गया है कि यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाह मृत्युढ दुराग्रहाणाम पुंसाम ति दूरो वसतोपि पुरिया। भगवान हृदय में हैं लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत दूर हो जाते हैं। और किस व्यक्ति के लिए? और कि यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाह मृत्युढ दुराग्रहाणाम, असती देह गेह है, ये जो शरीर है तो असत है, असत का अर्थ है जो बहुत कम दिन तक रहने वाला है, असत मतलब तुच्छ, तो तुच्छ ड्यूरेशन के दृष्टि से भी देख सकते हैं। ये शरीर कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, तो यह तुच्छ है। और भैलू के दृष्टि से भी देखे और उस दृष्टि से बहुत तुच्छ है। ये शरीर का मतलब क्या है, एक कफ बीत पात, कफ पीत और बात, इसी का तो संघात है। या और स्पष्ट शब्द में कहिए ते गुह मूत नेटा पोटा सब गंदा गंदा चीज है, कोई तो एक पैकिंग कर दिया गया है। ये हड्डी कोई अच्छा चीज है, मांस गुह मूत यही सब है ना, ये स्पष्ट समझ सकते हैं। ये शरीर का कोई भी द्वार है, गेट है, कहीं से अच्छा चीज निकलता है, सब घृणित चीज निकलता है, तो जो है वही निकलता है ना, तो इसको कैसे अच्छा कह देंगे। तो इस दृष्टि से भी यह तुच्छ है। यत्सानुबंधे सतिदेहगे, असति है तुच्छ असत है, लेकिन इसी को व्यक्ति अहम क्या अविद्या का करामात है कि इस तुच्छ शरीर को, जड़ को, गंदा चीज को, और जो चैतन्य रूप है भगवान का अंश है वह मान लेता है कि मैं हूं, और इससे जो संबंधित चीज है उसको मेरा है ये मान लेता है, और यह इतना जम जाता है कि इसे बाहर निकलता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए पुंसात दूर भगवान बहुत दूर हो जाते हैं। और इसलिए जिस व्यक्ति को भगवान का अन्वेषण करना है और उसके लिए प्रथम कर्तव्य है कि शरीर से अहम बुद्धि का त्याग करे, ये कम से कम इसको ढीला करे, और शरीर से जो संबंधित चीज है उसमें मम बुद्धि का त्याग करे। अरे शरीर ही अहम नहीं है तो इससे संबंधित चीज मम कैसे हो सकता है, ये तो अज्ञान की वृत्ति है। और इस कठिनाई को दूर करने के लिए भगवत प्राप्ति में जो अहम और मम रूढ़ हुआ है, और इसके लिए एक उपाय है कि जड़ चेतन का विवेक विकसित किया जाए। इसी से सांख्य शास्त्र में ये तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, और तत्व के नेचर को समझ करके व्यक्ति समझ सकता है कि ना ना यह तो भगवान नहीं हो सकता, यह तो आत्मा नहीं है, यह परमात्मा नहीं है। और इसलिए ये शरीर के बनावट को बतला रहे हैं कि अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता, आठ प्रकृति है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, आठ की गणना की गई है, भूमिरापनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। जो मूल प्रकृति है और महत तत्व और अहम तत्व तीन हुआ, और पंच महाभूत मतलब आकाश और आकाश के बाद वायु ने अग्नि, वायु जल और पृथ्वी, ते आठ हो गया। और विकारा षोडशाचार्य इसके पहले त्रय एवहि तद्गुणा, और ये जो तीन गुण हैं सत्व रज और तम, तो यह तो प्रकृति के ही हैं, तो उससे अलग इसकी गिनती नहीं किया जाए, वो तो प्रकृति के स्वरूप में ही है। प्रकृति का मतलब त्रिगुण, और विकारा षोडशाचार्य पुमान एक समन्वयात, और सोलह विकार है, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक अंतःकरण, कितना हुआ 11, और पांच तन्मात्रा मतलब इंद्रियों के विषय। रूप रस गंध स्पर्श, तो यह 16 हुआ और इसके साथ पुमान एक समन्वयात सम अन्वयात, ये सब है लेकिन यह टिक नहीं सकता, यह एक साथ स्थित है। उसके पीछे कारण है कि इसमें भगवान प्रविष्ट हुए और भगवान ही इसको बांध करके रखे हैं, एक साथ है। और भगवान इससे निकल जाए तो सब हट हट करके अपने कारण में चला जाएगा। तो आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि अतत्यदेत, व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि यह परमात्मा है, ये महत्तत्व परमात्मा है, तो उत्तर आएगा कि नहीं। क्या अहम तत्व है? नहीं। क्या भूमि है? नहीं, क्योंकि ये सब तो जड़ है। तो ऐसे अतत् का त्याग करके और परमात्मा का अन्वेषण किया जा सकता है। तो भगवान का अन्वेषण करना है और उसके लिए दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो देहात्म बुद्धि का त्याग होना चाहिए, जड़ और चेतन का विवेक विकसित करना चाहिए। और भी साधन बतलाए हैं, लेकिन कोई भी साधन कर रहे हैं जब तक गुरु का आश्रय नहीं रखे हैं, तब तक आप सफलता संदिग्ध है और मार्ग में बहुत बहुत कठिनाई आएगी। और इसीलिए कह रहे हैं गुरु शुश्रूषया भक्त्या, और गुरु की श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक सेवा और जो भी प्राप्त है गुरु को अर्पण करने से, भगवान की भक्ति करने से, कथा कीर्तन करने से, अर्चन पूजन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो अपने सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये देह और आत्मा, जड़ और चेतन का विवेक होना चाहिए। और हमारी साधना निर्बाध चले, हम निराशा में न पड़े, कठिनाई में न पड़े, उसके लिए गुरु का आश्रय बहुत आवश्यक है। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसको हम पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा निकालिए श्लोक, वो 10:33 स्क्रीन पर आ गया। आप लोग इसको थोड़ा पीछे से बोलिए, एक दो मिनट समय है। विजित ऋषि कवायु भीर दांत मन स्तुरगम विजित ऋषि कवायु भीर दांत मन स्तुरगम यतन्त्यन्तुमति लोलमुपायखिदः व्यसनशतान्विता समवहाय गुरोः शरणम् वणिजैवाज संत कृत कर्ण धरा जलधौ तो इसमें कह रहे हैं कि विजित हृषिक वायु, जो प्राणायाम इत्यादि करके अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिए हैं, लेकिन अदांत मनस्तुरगम, लेकिन मन पर अभी तो नियंत्रण हुआ नहीं, क्योंकि मन को कह रहे हैं कि ये बिगड़ंत घोड़े के समान है। तो मन यदि नियंत्रित नहीं हुआ और जो करके इंद्रियों को नियंत्रित कर लिए, तो यह अतंत यंतु मतिलोल उपाय खिद, कि जो व्यक्ति अब मन को बस में करना चाहता है, लोलम बहुत चंचल है तो उपाय करने में भी वह खिन्न हो जाता है, शोक में पड़ जाता है। व्यसन स्नान्विता समवाय गुरुश्चरणम वणिज इवाज संत अकृत कर्ण धरा जलधो। अरे के गुरु का आश्रय नहीं लिया और मन को नियंत्रित करने के लिए यत्न कर रहा है, बहुत बहुत बाधा आएगी। व्यसन स्नान्विता उसको बहुत बहुत कठिनाई आएगी और वह खिन्न हो जाएगा, प्रसन्न नहीं रह पाएगा। एक उदाहरण दे रहे हैं कि वणिज इवाज संत कृत कर्ण धरा जलधो। कोई बनिया है और बहुत बहुत सामान ले करके अपने व्यवसाय के लिए निकला, नाव पर बहुत बहुत चीज लादा है और कोई नाविक साथ में नहीं लिया तो उस बनिया की क्या स्थिति होगी? हमेशा भयभीत रहेगा या हो सकता है कि डूब जाए। और उसी प्रकार जो भी साधना करना चाहते हैं पर गुरु के चरणों का आश्रय नहीं लिए और बहुत बहुत उपाय कर रहे, भले ही अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है लेकिन मन को बस में नहीं कर पाएंगे, बहुत बहुत कठिनाई आएगी और वे खिन्न हो जाएंगे। और इसको फिर से एक बार इस श्लोक को बोलिए। बीजेता हृषि कबायु भीर दांत मन स्तुरगम थोड़ा इसका छंद भिन्न है तो इसीलिए मैं पाठ भी करा रहा हूँ कि एक बार अभ्यास हो जाए फिर बाद में आप करते रहिएगा। बीजेत हृषि कबायु भीर दांत मन स्तुरगम। साथ में बोलिए। बीजेत हृषि कबायु भीर दांत मन स्तुरगम यजन्ते यन्तुमति लोला उपायखिदः व्यसन सतान्विता समवहाय गुरुश्चरणम् वणिज इवाज संत कृत कर्ण धरा जलधौ। फिर से बीजेत हृषि कबायु भीर दांत मन स्तुरगम यैह यजन्ते यन्तुमति लोलमुपायखिदः व्यसन सतान्विता समवहाय गुरुश्चरणम् वणिज इवाज संत कृत कर्ण जला। एक बार फिर से बोलिए, स्थिरता से बोलिए। बीजेत हृषि कबायु भीर दांत मन स्तुरगम यैह यतन्ते यन्तुमति लोलमुपायखिदः व्यसन सतान्विता समवहाय गुरुश्चरणम् वणिज इवाज संत कृत कर्ण धरा जलधौ। वो प्रहलाद महाराज कई एक उपाय आगे बतलाए हैं और प्रथम उपाय है जड़ और चेतन का विवेक उत्पन्न करना, देह और आत्मा के प्रकृति को समझना। और भी उपाय हैं लेकिन सबके साथ गुरु का आश्रय आवश्यक है। एक चीज छोड़ देंगे तो कोई भी उपाय कीजिए आपको रास्ते में भी कठिनाई आएगी और मन खिन्न हो जाएगा, हो सकता है कि सफलता की प्राप्ति न हो। तो प्रहलाद महाराज के विचारों को हम लोग आगे के क्लास में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। गुरु कई एक स्तर के होते हैं। गुरु की एक परिभाषा है, प्राकृतः संस्कृतश्चैव गद्य पद्याक्षरेश तथा देश भाषादिभिः शिष्यं बोधयेत् स गुरु स्मृतः। कि प्राकृत और संस्कृत, संस्कृत मतलब होता है वो प्रोसेस जिसका संस्कार किया गया है, और जिसका संस्कार नहीं किया उसको प्राकृत कहते हैं। एक देखते हैं ना रॉ मटेरियल होता है और एक प्रोसेस्ड होता है। गुरु के लिए कह रहे हैं कि उसको दक्ष होना चाहिए कि प्राकृत और संस्कृत और गद्य और पद्य और देश के भाषा इत्यादि से शिष्य को जो बोध कराता है तो उसी को गुरु कहा गया है। गुरु के कई एक स्तर हैं। आप दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु की बात सुनते हैं और इस्कान में स्थापित पद्धति है, काउंसलर को बहुत महत्व देते हैं ना, जो डिसाइपल कोर्स कराया जाता है तो इस समस्या का निराकरण वहाँ दिया गया है। जरूर दीक्षा गुरु का महत्व है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु हैं और भी जो वैष्णव हैं मैनेजमेंट है वे सब गुरु के ही अंग हैं। हाँ ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की